पाठ सात अध्याय पांच। अब हम तोरह का लगभग 80% पियाज चुके हैं और हमने बहुत अधिक विवरण आत्मसात कर लिया है। आज जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय पांच का अध्ययन शुरू कर रहे हैं तो आइए कुछ मिनट रुकें और अपने विचारों को इकट्ठा करें और कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें। मुझे व्यवस्था विवरण के कुछ मूलभूत आधारों की एक तस्वीर खींचने के लिए कुछ मिनट दें, जिन्हें हमें इस महान पुस्तक और सामान्य रूप से बाइबल का अध्ययन करते समय हर समय ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है।
सबसे पहले व्यवस्था विवरण का संदर्भ यह है कि इज़राइल को कानून दिए गए थे, मूल रूप से माउंट पर दिए गए थे। सिनाई में जो कुछ लिखा गया है और अब मोआब में दोहराया गया है तथा कुछ हद तक व्याख्या की गई है यहोवा की ओर से। ईश्वर से आने वाले कानूनों के इस सेट की धारणा को स्वीकार करना हमारे लिए काफी सरल और आसान लगता है, लेकिन जिस तरह से अस्तित्व में केवल एक ईश्वर का होना दुनिया के लिए और इज़राइल के लिए एक पूरी तरह से नई अवधारणा थी, उसी तरह यह भी उतना ही क्रांतिकारी था कि एक ईश्वर उस राष्ट्र के राजा के बजाय किसी विशेष मानव समाज को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम स्थापित करेगा। इतिहास में इस बिंदु तक यह हमेशा एक मानव राजा था जिसका विशेषाधिकार यह घोषित करना था कि क्या सही है और क्या गलत, क्या कानूनी है और क्या आपराधिक। हालांकि इज़राइल के लिए सामाजिक कानूनों के स्रोत की आम समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। दूसरा, व्यवस्था विवरण का एक अतिरिक्त संदर्भ यह है कि जिन लोगों को मूसा इन नियमों को इज़राइल की यात्रा के इस बिंदु पर दोहराने वाला था, 10 नियमों की पहली श्रृंखला से शुरू होने वाले नियम जिन्हें हम 10 आज्ञाएं कहते हैं, ये लोग जो उसके सामने खड़े थे वे लगभग 40 वर्ष पहले जब पहली बार व्यवस्था दी गई थी तब उपस्थित नहीं थे, सिवाय शायद यदि वे उस समय छोटे बच्चे थे, क्योंकि निर्गमन की पहली पीढ़ी जिसने इस सब के विस्मय को देखा था अब मर चुकी थी और जा चुकी थी और स्पष्ट रूप से उन्होंने इसकी शिक्षा को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जैसा कि उन्हें देना चाहिए था।
तीसरा, हम आने वाले अध्यायों में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इन नियमों को इज़राइल की यात्रा के इस बिंदु पर कैसे देखा और लागू किया जाना चाहिए, जबकि 40 साल पहले जब वे जंगल में थे तब इन्हें कैसे देखा और लागू किया जाना चाहिए था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पोर्टेबल टेंट में रहने, हर दिन स्वर्ग से बरसने वाले मन्ना को खाने और एक नखलिस्तान से दूसरे नखलिस्तान में जाने का युग लगभग समाप्त हो चुका था। इसलिए मूसा को यह स्पष्ट करना पड़ा कि इज़राइल को इन नियमों और आज्ञाओं का पालन कैसे करना चाहिए, क्योंकि इज़राइल एक स्थायी और गतिहीन लोग बनने वाला था और भटकने वाले बेडोइन की एक बड़ी आबादी के रूप में रहना बंद कर रहा था। इज़राइल के लिए उनके अस्तित्व का संदर्भ बदल रहा था, इसलिए मूसा को कुछ चीजों को पुनः परिभाषित करना पड़ा, लेकिन यह पुनः परिभाषित करना हर समय माउंट सिनाई पर दी गई व्यवस्था की सीमाओं के भीतर ही रहा। यह एक महान सिद्धांत है जो हमसे छूट गया है। ईसाई धर्म में बाइबल युग की परिस्थितियों और समय सीमा और सांस्कृतिक मानदंडों की अनदेखी करना एक आम बात रही है, और इसके बजाय ये कहना कि बाइबल के शब्दों में यह रहस्यमय गुण है कि इसमें शामिल हजारों छंद और पैराग्राफ को उनके ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके किसी भी युग में अकेले खड़ा किया जा सकता है। मैं आपको एक संक्षिप्त उदाहरण देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज हम फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृति का गढ़ है। हम वर्ष 2009 में हैं। हमारा ध्यान विवादास्पद इराक युद्ध, इज़राइल के इर्द गिर्द घूमती कभी न खत्म होने वाली अशांति और वैश्विक वित्तीय संकट पर केंद्रित है, जिसने लाखों लोगों को उनकी नौकरियों और घरों से निकाल दिया है। इस्लामी फांसीवाद वैश्विक स्तर पर खुद को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे हर विचार पर हावी है, और यदि कोई ईसाई कट्टरपंथी है तो आपके विश्वास पर हमला हो रहा है। अब आपको हमारी सरकार के लक्ष्यों के लिए खतरा माना जाता है, और आप शायद इस बात को लेकर निश्चित हैं कि हम मानव इतिहास के अंतिम दिनों में हैं और हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित और अपरिवर्तनीय भविष्यवाणियों की घटनाओं का परिणाम है। हमारे लगभग आधे चर्च अब ईसा मसीह के ईश्वरत्व को नकारते हैं। लगभग एक चौथाई अमेरिकी चर्च समलैंगिक विवाह और समलैंगिकों को पादरी और बिशप के रूप में नियुक्त करने में विश्वास करते हैं। हमारे समाज में हर स्तर पर हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ रही है और मात्र 20 वर्ष पहले जिन कार्यक्रमों को एक्स रेटेड कार्यक्रम और पोर्नोग्राफी माना जाता था, वे अब प्राइम टाइम टेलीविजन पर आम बात हो गई है। हमारा अमेरिकी समाज मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाला है, लेकिन धीरे धीरे स्पेनिश एक आम दूसरी भाषा बन गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि स्पेनिश को अमेरिका की आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार्य बनाया जाए, जबकि अन्य लोग इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजी हमारी एकमात्र आम राष्ट्रीय भाषा बनी रहे और इसे कमजोर करना हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना होगा। हमारा देश राजनीतिक रूप से उदार और राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी सोच वाले लोगों के बीच लगभग समान रूप से विभाजित है, लेकिन बीच का रास्ता लगभग गायब हो गया है। यह वह ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें हम रहते हैं। यह वह संदर्भ है जिसमें हमारी दैनिक बातचीत होती है। यह संदर्भ हमारे समय के लिए अद्वितीय है। यह पहले मौजूद नहीं था और समय के साथ यह बदल जाएगा जो हम नहीं जानते। मुद्दा यह है कि जब हमारा राष्ट्रपति कोई भाषण देता है या हमारे युग की किसी प्रमुख घटना या मुद्दे के बारे में कोई नई पुस्तक लिखी जाती है या कोई उपदेशक हमें बताता है कि हम अपने जीवन में धर्मशास्त्र को कैसे लागू करें, यदि आप वर्ष 2009 में फ्लोरिडा में रहने वाले एक अमेरिकी हैं, तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, वह उस भाषण, पुस्तक या धर्मोपदेश के लिए दिया गया संदर्भ है। वक्ता या लेखक को हमारे युग को परिभाषित करने वाली इन सभी परिस्थितियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सर्वविदित है। लेकिन अगर कोई इंग्लैंड या तुर्की या मेक्सिको या रूस में रह रहा है तो संदर्भ काफी अलग है, और जब कोई नेता इनमें से किसी भी जगह बोलता है तो वह अपनी संस्कृति और मौजूदा परिस्थितियों के सापेक्ष संदर्भ में बोलता है। हमारा अमेरिकी संदर्भ न केवल उनके लिए काफी हद तक अप्रासंगिक है, बल्कि उनके दिमाग के लिए भी समझ में नहीं आता है। जब तक कि उन्हें किसी तरह से शिक्षित, परिचित और अमेरिकी मूल्यों, भाषा, इतिहास और हितों के बारे में अद्यतित नहीं किया जाता है।
बाइबल के साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए मैं तोरह क्लास में इतना समय बिताता हूं ताकि आपको उस वास्तविकता की याद दिला सकूं और भूगोल, भाषा के विकास, लोगों की सोच और चिंता, उनके लिए कुछ खास शब्दों और वाक्यांशों का क्या मतलब था, उस समय के मुख्य मुद्दे और चुनौतियां क्या थीं, किस बात को बिना किसी चुनौती के आम ज्ञान माना जाता था और क्या बात उनके लिए अभी तक पूरी तरह से अज्ञात थी, इसकी एक तस्वीर पेश कर सकूं। लेकिन जैसा कि आज हमारे साथ है, बाइबल के दिनों में समाज किसी भी समय एक समान और एक रूप नहीं था। हर कोई एक जैसा नहीं था और न ही वे सभी एक ही परिस्थितियों में रह रहे थे। इसलिए उदाहरण के लिए, नए नियम में हम संत पौलुस को नए और प्रगतिशील रोमन शहरों में से एक में मूर्तिपूजक गैर यहूदियों से बात करते हुए देखेंगे, जिसमें वे उन शब्दों और दृष्टांतों का उपयोग करेंगे जिनसे वे परिचित हैं। वह गैर यहूदियों से ग्रीक भाषा में बात करेगा जो वे इस्तेमाल करते थे। जब वह पवित्र भूमि पर वापस जाता था तो वह यहूदियों की अनूठी संस्कृति और पूरी तरह से अलग यहूदी समाज, रोमन दुनिया से अलग से बात करता था, जो कि गलील से लेकर सामरिया और यहूदिया तक की उनकी समझ के संदर्भ में था। इसलिए वह विभिन्न यहूदी समूहों से मुद्दों और उन शब्दों के बारे में बात करता था जो उनके लिए चिंता का विषय थे, इब्रानी और अरामी में, जो पवित्र भूमि में रहने वाले यहूदियों की भाषा है। अगर संत पौलुस ने रोमनों से यहूदी सांस्कृतिक और धार्मिक शब्दों का उपयोग करते हुए बात की होती तो वे इस बारे में अनभिज होते कि वह किस बारे में बात कर रहा था और शायद नाराज भी हो जाते। अगर वह यहूदियों से रोमन सांस्कृतिक शब्दों में बात करता तो यहूदी उससे मुंह मोर लेते और चले जाते, या जैसा कि हमने पढ़ा कि कई बार हुआ, उसे शहर से बाहर निकाल देते।
आप देखिए कि दुनिया में अब और कभी नहीं रहा, सामान्य लोग सामान्य समाजों में सामान्य परिस्थितियों में रहते हैं और एक ही सामान्य भाषा बोलते हैं। इसके बजाय हम बाइबल के ग्रंथों, पुराने नियम या नए नियम से कोई भी सार्थक जानकारी तभी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह संत पौलुस या यीशु या मूसा से हो, जब हम इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में लेते हैं। और फिर उस समय सामान्य अर्थ में इसका मतलब था इसे हमारी नई वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों में फिर से लागू करते हैं। इसलिए चूंकि व्यवस्था विवरण 5 मुख्य रूप से मूल 10 आज्ञाओं, जैसा कि 40 साल पहले दिया गया था, का पुनर्कथन है, तो हमें ध्यान से ध्यान देना चाहिए कि बहुत समय बीत चुका है, एक पूरी पीर ही मर चुकी है और संदर्भ उस समय से काफी अलग है जब इसे पहली बार घोषित किया गया था। यह लगभग 1300 ईसा पूर्व की बात है। अब्राहम को मरे हुए लगभग 500 साल हो चुके हैं। मूसा की मृत्यु में बस कुछ ही दिन बचे हैं और उसकी जगह नया नेता तैयार हो चुका है। वह मोआब की एक पहाड़ी पर खड़ा है और उन युवा पीढ़ी के उत्सुक योद्धाओं को संबोधित कर रहा है जो कनान पर पवित्र युद्ध में शामिल होने वाले हैं। कानून अच्छी तरह से स्थापित है और अब 40 वर्षों से इसका पालन किया जा रहा है। पुरोहिताई पूरी तरह से काम कर रही है। जंगल में स्थित तंबू पृथ्वी पर परमेश्वर का मान्यता प्राप्त निवास स्थान माना जाता है तथा यहोशू को मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया है। इसराइल वर्तमान में लगभग 3 मिलियन लोगों का एक नस्लीय रूप से मिश्रित राष्ट्र है, जिसमें पूर्ण रक्त वाले इब्रानी, कई जातियों के विदेशी शामिल हैं जो आधिकारिक तौर पर इसराइल में शामिल हो गए हैं। अर्थ नस्ल, इन विदेशियों के साथ अंतरजातीय विवाह का परिणाम, और गैर इब्रानी दास हैं। हजारों विदेशी विशाल इसराइली शिविर के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि ये विदेशी इसराइल के साथ दोस्त बनना चुनते हैं, लेकिन इब्रानी राष्ट्र के हिस्से के रूप में उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। मूसा इन सभी लोगों से बात कर रहा है, न कि केवल कुछ लोगों से, भले ही जो लोग वास्तव में उसकी आवाज सुन रहे हैं वे लोगों के प्रतिनिधि हैं, आदिवासी बुजुर्ग और सरदार।
इस पृष्ठभूमि के साथ आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 5 पढ़ें।
व्यवस्था विवरण अध्याय 5 पूरा पढ़ें। इस अध्याय में हम पाते हैं कि मूसा यह दावा करने के लिए आधार को पुनः स्थापित कर रहा है कि वह ईश्वर और इसराइल के बीच एकमात्र और अद्वितीय मध्यस्थ है, अर्थात वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये वे नियम हैं जो मैं मूसा तुम्हारे लिए घोषित करता हूं, पद एक में। लेकिन फिर यह स्पष्ट करता है कि वह उन्हें वही दोहरा रहा है जो प्रभु ने उसे बताया था और जो उनमें से कई ने बच्चों के रूप में ऊपर से एक भयावह और गरजने वाली आवाज से सुना था। मूसा इस बात के लिए, इस नई पीढ़ी के लिए एक आधार को पुनः स्थापित कर रहा है कि यहोवा इसराइल का परमेश्वर क्यों है और क्यों होना चाहिए, और उनकी वफादारी केवल यहोवा के प्रति होनी चाहिए और इसराइल को यहोवा की आज्ञा माननी चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। इसका कारण पहली आज्ञा में बताया गया है जो पद 6 है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया है।
मैं आपको याद दिलाता हूं कि सदियों से यह आदर्श बन गया है कि मूल पहली आज्ञा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवे हूं, को अनदेखा किया जाए और दूसरी आज्ञा को तोड़कर उसमें से 2 आज्ञाएं बनाई जाए ताकि 9 आज्ञाएं न दिखाई दें। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण त्रुटि है जिसका ईसाई धर्म के ऐतिहासिक झुकाव से बहुत कुछ लेना देना है, जो यहूदी लोगों को ईश्वर के पसंदीदा लोगों के रूप में उनके उचित स्थान से वंचित करने के लिए है। इसने चर्च के इस तरह के अहंकारी रवैये को भी जन्म दिया है कि जिन लोगों को ईश्वर का वचन सौंपा गया था, इब्रानी, अब अपने स्वयं के यहूदी मसीहा से पूरी तरह से अलग थलग महसूस करते हैं। उन्हें ईसाइयों द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि यदि वे यीशुआ पर विश्वास करते हैं तो यह एक गैर यहूदी धर्म को स्वीकार करने के बराबर होगा। चर्च की स्थिति को मान्य करते हुए कि यहूदियों को अब प्रभु द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और उनकी जगह गैर यहूदियों ने ले ली है, और इस तरह वे अपने विशेष स्थान से मुंह मोड़ लेंगे जो उन्हें उनके अलग अलग लोगों के रूप में दिया गया था।
इसलिए मूसा कहता है इसराइल को यहोवा और सिर्फ यहोवा की ओर देखना चाहिए, क्योंकि यह यहोवा ही है और कोई दूसरा देवता नहीं, जिसने पहले कभी न देखे गए चिन्हों और चमत्कारों के जरिए इसराइल को मिस्र से बचाया था। इसके अलावा अब यह स्थापित हो चुका है कि अन्य देवताओं के सामने झुकना मूर्खता है, क्योंकि उनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे झूठे देवता हैं, इस अर्थ में नहीं कि यहोवा एक बेहतर देवता है, बल्कि इस अर्थ में कि वे मनुष्यों की मूर्खतापूर्ण और दुष्ट प्रवृत्तियों की कल्पना मात्र हैं, जो इतनी आसानी से मूल आत्माओं और असंख्य सृजित वस्तुओं को देवता या पूजा की जाने वाली चीजों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमने कुछ समय पहले निर्गमन 20 की जांच करते समय तथा कथित 10 आज्ञाओं का बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हीं आज्ञाओं को यहां व्यवस्था विवरण 5 में दोहराया गया है। इसके बजाय मैं केवल मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा या उन स्थानों को इंगित करूंगा जहां व्यवस्था विवरण 5 के शब्द निर्गमन 20 से थोड़ा भिन्न है। एक व्यापक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि 10 आज्ञाएं, शश नियमों के 10 मार्गदर्शक सिद्धांत जो आगे आएंगे, 2 स्पष्ट समूहों में विभाजित हैं। पहली 4 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति मनुष्य के दायित्वों की बात करती हैं और शेष 6 हमारे साथी मनुष्यों के बीच संबंधों से संबंधित हैं। कृपया एक बात पर ध्यान दें जो मुझे आशा है कि स्पष्ट हो गई है या हो रही है, 10 आज्ञाओं में कहीं भी या उस मामले में कानून में कहीं भी उद्धार का मुद्दा, जैसा कि हम आज सोचते हैं, नहीं आता है। कानून बस इससे निपटता नहीं है, क्योंकि यह कभी इसका प्राथमिक उद्देश्य या कार्य नहीं था। और आपको जो भी बताया गया हो, उसके बावजूद इब्रानियों ने उद्धार के लिए कानून की ओर नहीं देखा, क्योंकि यह वहां नहीं था और उन्हें नहीं लगता था कि यह वहां है। इसलिए जब हम संत पौलुस को यह समझाते हुए देखते हैं कि कानून बचाने में सक्षम नहीं था, तो वह बस अपने गैर यहूदी श्रोताओं को यह बता रहा था कि वे केवल मसीहा द्वारा किए जा सकने वाले कामों के विकल्प के रूप में कानून की तलाश न करें। चूंकि मसीह एक यहूदी था और यह केवल यहूदियों के धर्म और वाचाओं के भीतर ही था कि मसीहा के आगमन का कोई अर्थ था, तो यहूदियों द्वारा किए गए कार्यों की नकल करना धर्मांतरित गैर यहूदियों के लिए स्वाभाविक धारणा थी, व्यवस्था के बाहरी अनुष्ठानों का पालन करना। समस्या यह है कि पौलुस जानता था कि यदि उन्हें अन्यथा नहीं सिखाया गया, गैर यहूदी गलती से सोचेंगे कि यह उनके कार्य और व्यवहार थे जो उन्हें उनका उद्धार लाए, और जब पौलुस यहूदियों से ऐसी ही बातें कह रहा था तो वह बस इन इब्रानियों को बता रहा था कि जबकि व्यवस्था का पालन करना अच्छा और महत्वपूर्ण था, मसीहा कुछ ऐसा कर रहा था जो व्यवस्था का पालन करने से कभी नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि नए नियम में संत पौलुस या जीसस या कोई अन्य लेखक कहता है कि ईसाइयों को एंटीनोमियन, 50 सेंट का शब्द जिसका अर्थ है कानून विरोधी, होना चाहिए, बल्कि यह था कि उन्हें उद्धार के लिए मसीह की सेवकाई का लाभ उठाना चाहिए, बजाय इसके कि वे गलती से मान लें कि उनके पास विकल्प बी है, जो कि वही काम पूरा करने के लिए नियमों और कानूनों की एक श्रृंखला का पालन करना था। देखो, जब हम मसीह के पास आते हैं तो हम खाना खाना बंद नहीं करते, हम पवित्र शास्त्र सीखना बंद नहीं करते। खाना खाने से हमें मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खाना बुरी चीज है। शास्त्रों को सीखने से हमें मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन एक बार जब हम मोक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो वचन का अध्ययन करना पुराना और अनावश्यक नहीं रह जाता, बल्कि इनमें से प्रत्येक कार्य का एक निरंतर उद्देश्य होता है। हम खाते हैं क्योंकि हमारे भौतिक शरीर को शारीरिक पोषण की आवश्यकता होती है। हम शास्त्रों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक बार जब हम यीशु में विश्वास करके छुरा लिए जाते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को आध्यात्मिक पोषण देते हैं, और ताकि हम जान सकें कि हमारे प्रति ईश्वर की कृपा और कृपा के प्रति हमारी अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या है। मसीह कहते हैं
कि वह जीवन की रोटी है, लेकिन कोई भी गंभीरता से इसका अर्थ नहीं लेगा कि बचाए गए लोगों के रूप में हमें अब भोजन खाने की जरूरत नहीं है। वह यह भी कहता है कि तोरा हमारे दिलों पर लिखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसके लिखित वचन से परमेश्वर के तरीकों को सीखना बंद कर देना चाहिए। उसी तरह जब हम विश्वास में यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अब उन नियमों और अध्यादेशों के खिलाफ नहीं जाते हैं जिन्हें प्रभु ने अपने चरित्र को प्रदर्शित करने और हमें छुराए गए जीवन को जीने के तरीके के बारे में निर्देश देने के लिए स्थापित किया था। दूसरी आज्ञा को पद 8 से 10 में फिर से बताया गया है और यह स्पष्ट करता है कि इज़राइल को किसी अन्य ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह बहुत सीधा है और मैं इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जो बताना चाहता हूं वह है मूसा की वाचा का ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध की प्रकृति। मैंने पिछले सप्ताह इस गैर शास्त्रीय झूठे द्वैतवाद के बारे में बात की थी जो आधुनिक ईसाई धर्म में स्थापित किया गया है, जो मांग करता है कि हम पुराने नियम को एक कानूनी संहिता की स्थापना के रूप में देखें और नए नियम को दुनिया में अनुग्रह की शुरुआत के रूप में देखें। इसका एक हिस्सा यह है कि पुराने नियम को एक तानाशाह राजा के रूप में स्थापित किया गया था जो अवैयक्तिक आदेश देता था जिसका पालन किया जाना था या नहीं, और वैकल्पिक रूप से यह कि नए नियम में ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है जो बचाए गए लोगों पर कोई दायित्व नहीं डालता है। हम सभी ने पादरियों को यह कहते हुए सुना है कि ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक रिश्ता है। वैसे बिल्कुल यही बात शुरू से ही सच थी। यह एक बुनियादी बाइबल की स्वयं सिद्ध बात है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाचाएं रिश्ते पर आधारित होती हैं। इसलिए हमें पुराने नियम के वाक्यांशों में रिश्ते का सूत्र मिलता है, जैसे मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, निर्गमन 6:7, या लेव 26:12 में मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरी प्रजा बनोगे। समीकरण पर ध्यान दें, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यही रहूंगा और परिणाम स्वरूप तुम मेरे लिए यही रहोगे। और जबकि परमेश्वर एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की संभावना प्रदान करता है, इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना आप पर निर्भर है। यह एक रिश्ते की परिभाषा है और इसका आधार हमारे मानवीय विवाह की श्रापों जैसा ही है जो हमेशा से ही प्रभु के साथ हमारे आध्यात्मिक और अदृश्य रिश्ते का एक भौतिक और दृश्य चित्रण माना जाता था। ध्यान दें कि विवाह समारोह में दुल्हन से यह सवाल पूछा जाता है, क्या तुम इस आदमी को अपना पति बनाओगी, और दूल्हे से, क्या तुम इस महिला को अपनी पत्नी बनाओगी। दोनों पक्षों को इस रिश्ते में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने के लिए सहमत होना चाहिए। यदि परमेश्वर यह स्थापित करता है कि इसराइल उसके लोग होंगे और बदले में वह उनका परमेश्वर होगा, और मानवीय विवाह के मामले में दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए, दोनों पक्षों के पास दायित्व हैं और दोनों पक्षों के पास कानूनी स्थिति है। यदि प्रभु ने केवल यह कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और इसराइल को इस मामले में कोई विकल्प नहीं दिया गया, तो क्विड प्रो क्वो गायब है और इसलिए कोई रिश्ता नहीं है, केवल दासता है। यदि विवाह समारोह में पुरुष यह घोषित कर दे कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, किंतु स्त्री से यह न पूछा जाए कि क्या वह इस पुरुष से विवाह करना चाहती है, तो वहां कोई संबंध नहीं है बल्कि अधीनता है। तीसरी आज्ञा यह है कि प्रभु के नाम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह 10 आज्ञाओं में से सबसे अधिक गलत तरीके से वर्णित आज्ञा हो सकती है। यह आज्ञा मुख्य रूप से एक बात के बारे में है, शपथ में ईश्वर के नाम का जमानत के रूप में आह्वान न करना, जो या तो अपने आप में झूठी हो या जिसे निभाने का आपका कोई इरादा न हो। इस आज्ञा के उद्देश्य के रूप में उनके औपचारिक नाम, याहवे के आकस्मिक गलत उच्चारण का यह आधुनिक विचार, या कि हमें उनका पवित्र नाम कहने से पूरी तरह बचना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार निराधार है। तलमूड यह स्पष्ट करता है कि यहूदियों ने पवित्र नाम याहवे का उच्चारण न करने को लगभग 300 ईसा पूर्व से अपना लिया। इस तीसरी आज्ञा से इसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसे उचित सम्मान का विषय माना जाने लगा। तलमूड में और फिलो और जोसेफस के लेखन में भी कई कारण बताए गए हैं कि क्यों परमेश्वर का औपचारिक नाम लेना अपमानजनक माना जाने लगा, और जबकि कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया गया है, सामान्य तौर पर इसका संबंध मध्य पूर्वी रिवाज से था कि बेटे या बेटी के लिए अपने माता पिता के नाम का उच्चारण करना सम्मानजनक नहीं था। विस्तार से इसे परमेश्वर के नाम पर ले जाया गया, क्योंकि परमेश्वर को अब्बा इब्रानियों के स्वर्गीय पिता के रूप में पहचाना गया था। मैं जोर देकर कहता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वह मेरी राय नहीं है, यह केवल यहूदी दस्तावेजों में दर्ज इतिहास है जो कोई भी व्यक्ति खोज कर पढ़ सकता है। प्राचीन काल में व्रत और शपथ लेना आम बात थी। परिभाषा के अनुसार व्रत या शपथ में किसी एक देवता या किसी अन्य के नाम का उपयोग शामिल होता है। यदि किसी देवता का नाम नहीं लिया जाता तो कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी व्रत या शपथ नहीं होती। इस तीसरी आज्ञा का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि व्रत और शपथ लेते समय परमेश्वर का नाम लापरवाही या तुच्छता से नहीं लिया जाना चाहिए। और पुराने नियम की बात की किताबों और यहां तक कि नए नियम के लेखन में यह सलाह दी गई है कि कुल मिलाकर यह बेहतर है कि प्रतिज्ञाएं और कस्में बिल्कुल न ली जाए जहां तक संभव हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिज्ञा या शपथ में यहोवा के नाम का आह्वान करता है तो परमेश्वर पूरी तरह से उम्मीद करता है कि सामग्री या इरादे की परवाह किए बिना शर्तों को पूरा किया जाएगा। बाइबल की सबसे बदनाम कहानियों में से एक यिप्तहा नाम के एक व्यक्ति के बारे में है, जिसने यहोवा से की गई एक जल्दबाजी की प्रतिज्ञा के कारण अपनी बेटी को होम बलि चढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे इस भयावहता की उम्मीद नहीं थी। वैसे यह एक प्रतिज्ञा थी जिसके लिए यिप्तहा ने परमेश्वर से संपर्क किया और शर्तें तय की। परमेश्वर ने निश्चित रूप से बलिदान के रूप में एक मानव जीवन नहीं मांगा, न ही वह इसकी निंदा करता है। चौथी आज्ञा, सप्त दिवस का पालन करना है। मैंने इस मामले पर आप सभी को काफी समझाया है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। कृपया ध्यान दें कि सप्त एक विशिष्ट दिन का उचित नाम है।
वास्तव में किसी भी अच्छे अनुवाद में शब्द सप्त के दिन का पालन करें है, जबकि यह स्वीकार्य है, फिर भी यह थोड़ा सा लक्ष्य चूक जाता है, क्योंकि शाब्दिक रूप से यह सप्त का पालन करें पड़ता है। मुद्दा यह है कि सप्त कोई भी दिन नहीं है, यह एक विशिष्ट दिन है जिसे प्रभु ने पवित्र के रूप में नियुक्त किया है। दो बातें, इसे बाइबल में सप्ताह के सातवें दिन के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि हमारे द्वारा चुने गए किसी भी सात दिन की अवधि के अंतिम दिन के रूप में। मैं पवित्र शास्त्र में कहीं भी इसे किसी अन्य दिन के रूप में नहीं बताया गया है। इसके अलावा दिन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने इस विशेष दिन को अन्य सभी दिनों से अलग रखा है और इसे पवित्र बनाया है। प्रश्न, कौन किसी चीज को पवित्र बनाता है? क्या आप किसी चीज को पवित्र घोषित कर सकते हैं? क्या आप किसी साधारण चीज को लेकर अपनी शक्ति से उसे पवित्र बना सकते हैं? आपके पादरी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह किसी साधारण चीज को पवित्र बना सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज को पवित्र बनाना पूरी तरह से ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम अपनी इच्छा से कोई भी दिन चुनकर उसे पवित्र घोषित नहीं कर सकते। सप्त विश्राम के दिन से कहीं बढ़कर है। यदि यह केवल शारीरिक विश्राम का दिन होता तो निश्चित रूप से इसमें वह पवित्र चरित्र नहीं होता जो याहवे ने इसे दिया है। इसके विपरीत, जब भी हम काम से छुट्टी लेते हैं किसी भी कारण से, तो वह दिन सप्त का दिन नहीं बन जाता। मूर्ति पूजक दुनिया में छुट्टी के दिन होते थे और सरकार आमतौर पर नियंत्रित करती थी कि कौन सा दिन हो सकता है। उनके पास सर्दियों और गर्मियों के संक्रांति मनाने के लिए छुट्टी के दिन थे। उनके पास नए राजा के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए छुट्टी के दिन थे। उनके पास अपने कई देवताओं का जश्न मनाने और उनकी पूजा करने के लिए छुट्टी के दिन थे। उनके पास छुट्टी के दिन थे फसल के मौसम के अंत का जश्न मनाने के लिए। वे विश्राम के दिन थे, लेकिन वे सप्त नहीं थे। सप्त सृष्टि के चमत्कार का साप्ताहिक पालन है। देखिए, यह सही ही कहा गया है कि यीशु ने कहा कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य सप्त के लिए नहीं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि सप्त का एकमात्र उद्देश्य यह था कि मनुष्य काम से एक दिन की छुट्टी ले सके, बल्कि यह था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते का आनंद ले सके और उसे ताजा कर सके। यह अवकाश मनुष्य और पशुओं के लिए शारीरिक रूप से तरोताजा होने के लिए वास्तव में सहायक था, लेकिन मुख्य रूप से यह इसलिए था ताकि मनुष्य याद रख सके कि प्रभु ने उसे छुराकर और मनुष्य के चारों ओर वह सब कुछ बनाकर उसके लिए क्या किया है जो हमें जीवित रखता है। यह परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है कि हम आराम करें, यह परमेश्वर का सम्मान करता है कि हम उस पर चिंतन करें और उस दिन को मनाकर उसकी आज्ञा का पालन करें जिसे उसने सप्ताह के सामान्य दिनों से अलग करके अलग रखा है और इसे विशेष के रूप में आशीर्वाद दिया है। हमने अब उन आज्ञाओं पहली से चौथी की समीक्षा की है जिनका संबंध परमेश्वर की इस अपेक्षा से है कि हम उनके उपासक के रूप में उनके नाम, उनके स्वभाव, उनकी पहचान और उनके पवित्र दिन को स्वीकार करें। आज्ञा संख्या 5 के साथ एक बदलाव है कि प्रभु मानव से मानव उन्मुख संबंधों की क्या मांग करते हैं, और ये विशेष रूप से बच्चों के अपने माता पिता के प्रति दायित्व को कवर करेंगे, और यह कि किसी को अपने पड़ोसियों और समाज के जीवन, व्यक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का सम्मान और सुरक्षा कैसे करनी है। कोई यथोचित रूप से कह सकता है कि ये प्रभु द्वारा निर्धारित मानवीय नियम है। 5वीं आज्ञा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्यों, हमारे माता पिता के साथ हमारे उचित संबंध का वर्णन करती है। जिस तरह लैव्य व्यवस्था 19 में पुजारियों को अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए कहा गया है, उसी तरह 10 आज्ञाएं इसे न केवल पुरोहित वर्ग के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक कर्तव्य बनाती है जो इसराइल का हिस्सा बनना चाहते हैं कि मानवीय रिश्तों में अपने माता पिता के प्रति दायित्व सर्वोच्च है। दिलचस्प बात यह है कि इस आदेश का इस्तेमाल आम तौर पर स्कूली बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है जब बात अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होने की आती है, लेकिन विभिन्न बाइबल युगों के दौरान इसे इस तरह नहीं देखा गया। इसके बजाय यह इस बारे में अधिक है कि कैसे बड़े बच्चों को अपने माता पिता की जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करनी चाहिए और कैसे बड़े बच्चों को अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना जारी रखना चाहिए। यह दिलचस्प है कि यह मुद्दा परमेश्वर की सूची में इतना ऊपर है कि लैव्य व्यवस्था 19:3 में उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने माता पिता के प्रति उचित सम्मान दिखाने को एक मानवीय सामाजिक दायित्व के रूप में उसी स्तर पर रखा है जिस स्तर पर सप्त का पालन करना परमेश्वर के प्रति हमारा दायित्व है, क्योंकि उस पद में कहा गया है, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिनों को मानेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सांसारिक माता पिता और स्वर्गीय माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य एक और रोचक बात यह है कि अक्सर धर्म ग्रंथों में माता पिता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द तुम्हारी माँ और पिता होता है, जिसमें माँ शब्द पहले आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि माँ को पिता से ऊपर रखने का इरादा है, बल्कि इसका मतलब है कि पुरुष प्रधान समाज में माँ और पिता को समान दर्जा दिया जाए। क्योंकि ईश्वर किसी एक लिंग को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं देता, इसलिए बच्चे को भी एक माता पिता की जरूरतों को दूसरे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। वे परमेश्वर की नजर में बराबर हैं और इसलिए बच्चे की नजर में भी उन्हें बराबर होना चाहिए। रब्बियों ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार किया और तलमूड में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सभी 10 आज्ञाओं में से अपने माता पिता का आदर करने के निर्देश से संबंधित यह आज्ञा ही एकमात्र ऐसी आज्ञा है जो इसका पालन करने वाले सभी लोगों को पुरस्कार देने का वादा करती है। ये कहती है कि ऐसा करने से पृथ्वी पर व्यक्ति का जीवन लंबा होगा और वह अच्छा करेगा या इससे भी बेहतर, उसे कल्याण प्राप्त होगा। 6 छवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं अध्यायें बहुत संक्षिप्त हैं और सभी एक ही पद में समाहित हैं। छवीं आज्ञा यह है कि किसी को रतसच नहीं करना चाहिए। रतसच इब्रानी में हत्या के लिए है, इसका मतलब मारना नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई शिकार करने नहीं जाएगा और हिरण को रतसच हत्या नहीं करेगा। इस आज्ञा का उद्देश्य बहुत सीमित है और इसका विशेष रूप से मतलब है कि किसी व्यक्ति को, किसी अन्य इंसान को अन्यायपूर्वक नहीं मारना चाहिए। कानूनी निष्पादन इस आदेश का विषय नहीं है, युद्ध में मृत्यु इस आदेश का विषय नहीं है, यहां तक कि हत्या इस अर्थ में कि किसी को मारने का इरादा नहीं है, न ही मृत्यु घोर लापरवाही का परिणाम है, भी इस आज्ञा का विषय नहीं है। कीवर्ड अन्यायपूर्ण है। और वैसे अन्यायपूर्ण हत्या करने वाले व्यक्ति को निष्पादित करके कानूनी प्रतिशोध की अपेक्षा की जाती है और प्रभु द्वारा इसकी मांग की जाती है। सातवीं आज्ञा यह है कि किसी को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। बाइबल के व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्ति और उस विवाह से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहमति से यौन संबंध बनाना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि पत्नी किसी गंभीर असहमति में अपने पति के विरुद्ध किसी पुरुष का पक्ष ले। इस युग के मध्य पूर्वी समाजों में विवाहितर संबंधों को बहुत बुरी बात माना जाता था और इनमें से अधिकांश समाजों में अपराधी को कड्डी ढी सजा दी जाती थी, आमतौर पर मृत्युदंड दिया जाता था। वास्तव में सातवीं आज्ञा के समान एक कानून इस युग के अधिकांश समाजों में काफी सामान्य और प्रथागत था। आठवीं आज्ञा यह है कि किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ठीक वैसा ही है जैसा हम आज सोचते हैं। हमें किसी से कुछ ऐसा नहीं लेना चाहिए जो हमारा हक नहीं है। कुछ रब्बियों ने कहा कि इस आज्ञा में अपहरण, किसी इंसान को अवैध रूप से ले जाना शामिल है, हालांकि यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। बल्कि यह व्यक्तिगत संपत्ति और किसी की संपत्ति को गलत तरीके से छीने जाने के खिलाफ निषेध के बारे में है। नौवीं आज्ञा यह है कि किसी को दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हमारी आधुनिक शब्दावली में इसका मतलब झूठी गवाही देना है। इसका मतलब आम तौर पर बातचीत में झूठ बोलने से बचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब किसी के खिलाफ गलत काम करने का झूठा आरोप लगाना है, जिससे आपराधिक दंड हो सकता है। और यह कानून की अदालत में सच न बोलने के बारे में है, जो या तो दोषी को बरी कर सकती है या निर्दोष को दोषी ठहरा सकती है। अब दसवीं आज्ञा कुछ हद तक अनोखी है, क्योंकि जब बाकी सभी ठोस कार्यों और बाहरी व्यवहारों की बात करते हैं तो ये कहती है कि किसी व्यक्ति को किसी और की चीज का लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सब एक मन की स्थिति के बारे में है। लालच का मतलब है किसी ऐसी चीज को अपना बनाने के लिए गुप्त योजनाएं बनाना जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसा एक मन की स्थिति अंततः उस चीज को गलत तरीके से प्राप्त करने की कार्रवाई में प्रकट हो सकती है जिसे चाहा जा रहा है, लेकिन यह इस आज्ञा का उद्देश्य नहीं है। पहली चीज जिसकी लालसा नहीं करनी चाहिए वह है अपने पड़ोसी की पत्नी, यानी किसी विवाहित महिला को वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए और उसे अपने लिए नहीं चाहना चाहिए। अगली चीज जिसकी लालसा नहीं करनी चाहिए या जिसे गलत तरीके से हासिल करने की योजना नहीं बनानी चाहिए वह है अपने पड़ोसी का घर। इसका मतलब आपके रहने की जगह नहीं है, वह तंबू या झोपड़ी या इमारत जिसमें आप रहते हैं। यहां घर का इस्तेमाल परिवार के अर्थ में किया गया है, यानी वे लोग जो आपके विस्तृत परिवार का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया है कि बाइबल के ज्यादातर युगों में कबीले या जनजाति के लिए लोगों को जबरन अक्सर पूरे घर को हड़प कर अपनी शक्ति और संपत्ति बढ़ाना आम बात थी। हमारे पास इसका एक सीधा उदाहरण है, जब याकूब के बेटों ने ठीक यही किया जब वे कुछ समय के लिए शेकेम में रुके थे और उन्होंने याकूब की बेटी दीना के बलात्कार का बदला लेने के लिए लोगों को हड़प लिया। इसने रातों रात याकूब के कबीले के आकार को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, क्योंकि इसराइलियों ने लोगों के पूरे घर को हड़प लिया। 10 आज्ञाओं का दोहराव अब पूरा हो गया है और मूसा लोगों को याद दिलाता है कि ये 10 नियम थे जिन्हें लोगों ने सीधे परमेश्वर से अपने कानों से सुना था। बाद में आए 603 नियम मूसा को दिए गए और फिर उसने उन्हें लोगों तक पहुंचाया। मूसा ने लोगों को यह भी याद दिलाया कि परमेश्वर चाहता था और मूसा पूरी तरह से खुश होता कि वह अपनी दिव्य वाणी से सीधे उन्हें अपना तोरह देता रहे ताकि सभी सुन सकें, लेकिन परमेश्वर की भयानक उपस्थिति के प्रति उनके भय ने उन्हें मूसा से विनती करने के लिए प्रेरित किया कि वह परमेश्वर से कहे कि वह उनसे बात करना बंद कर दे और इसके स्थान पर मूसा उनके मध्यस्थ के रूप में कार्य करें। अगले दो पद 25 और 26 कुछ रोचक जानकारी जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यहोवा वास्तव में इज़राइल की इस प्रवृत्ति के लिए प्रशंसा करता है कि मूसा को व्यवस्था प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई। परमेश्वर की उपस्थिति में उनके खरे होने और प्रभु से व्यवस्था सुनने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु ने इज़राइल को कमजोर या अंधविश्वासी या उसकी आवाज सुनने के अयोग्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने मूसा के माध्यम से व्यवस्था प्राप्त करने के उनके अनुरोध को अपनी अद्भुतता के लिए उचित प्रतिक्रिया और परमेश्वर के साथ एक समझौते के रूप में देखा कि मूसा उसका अधिकृत मध्यस्थ था। इज़राइल ने यहोवा के लिए एक स्वस्थ भय और श्रद्धा प्राप्त की थी और जब तक वे इसे बनाए रखते और तोरह के आदेशों का पालन करते तब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हमेशा भला होता। उस निहायती हानिरहित कथन में कुछ मौलिक ईश्वर सिद्धांत समाहित हैं। पहला, प्रभु उन लोगों को बहुत आशीर्वाद देंगे जो उन्हें उचित सम्मान दिखाने और आज्ञाकारिता में उनका अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। दूसरा, यह कि मनुष्य के पास एक विकल्प है, प्रभु किसी को भी आज्ञा मानने या उसकी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आम तौर पर कहा जाए तो प्रभु किसी व्यक्ति को कठपुतली की तरह नियंत्रित नहीं करता, न ही किसी व्यक्ति के दिमाग या किसी व्यक्ति के कार्यों को। चूंकि पद 27 में लोग चाहते थे कि मूसा उनके बदले में तोरह का बचा हुआ हिस्सा प्राप्त करे, इसलिए यहोवा ने मूसा से लोगों को उनके घर उनके तंबुओं में जाने के लिए विदा करने को कहा। समझिए कि उन्हें इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि उन्होंने रिहा होने के लिए कहा था, इसके अलावा उन्हें नहीं रखा गया था। किसी तरह की नजरबंदी में उन्हें मूसा द्वारा व्यवस्था प्राप्त करने के दौरान अपने तंबुओं में जाने और रहने का आदेश नहीं दिया गया था। इसके बजाय लोगों को बस अपने रेगिस्तानी निवासों में वापस जाने की अनुमति दी गई थी और उन्हें वहां रहकर परमेश्वर के वचनों को सुनने की आवश्यकता नहीं थी। और लोगों को विदा करने के निर्देश के साथ साथ मूसा को यह भी कहा गया कि वह जहां हो है वहीं रहे, ताकि प्रभु जो कार्य शुरू किया है उसे पूरा कर सके। लोगों को मूसा के संबोधन का यह भाग इस पूरे उपदेश के मुख्य बिंदु के साथ समाप्त होता है। यह है कि माउंट सिनाई पर जो कुछ हुआ तथा उसके बाद जो दुर्घटनाएं हुई जिनमें हजारों इब्रानियों की मृत्यु हुई, उनसे जो सीखा जाना चाहिए और आशा है कि उन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए, वह यह है कि मूसा द्वारा इसराइलियों की इस नई पीढ़ी को जो तोरह सिखाने की प्रक्रिया चल रही है उसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा इस नई पीढ़ी को भी वही परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो उनके माता पिता को मिले थे।
अगले सप्ताह हम अध्याय 6 शुरू करेंगे।